उसकी बातें अकल से बाहर है क्या नहीं है। खुदावंद भला है, उस पर भरोसा करना कितना अच्छा है। मुझे यकीन है आज रात आपका अच्छा वक्त गुजरा होगा। और अब कुछ देर पहले दरवाजे खुलते ही गीत की धुन सुनाई दी। थामे रहे एक घड़ी और, बहन गेटी इस पुराने गीत को गा रही थी। इससे मुझे उन दिनों की याद आई जब ये चर्च छोटा सा था और मैं मिशनरी काम के लिए दूसरी जगहों पर चला गया था। मैं इस पुराने शतीर की दूसरी जानिब देख रहा था कि पहले खुदा को तलाश करो। मुझे याद है 25 साल पहले भाई सैमी डेविडसन ने इसे पेंट किया था। इसकी दूसरी तरफ मैं सोचता हूँ कि आप अपनी अब्दियत कहाँ गुजारेंगे, जरा सोचें। और ठीक वहाँ कुएं पर एक औरत थी और दानियल शिरों की गार में था। ओ मेरे खुदाया, तब से अब तक क्या कुछ हो गया है। फक्त आज दोपहर बाद 5 बजे मुझे एक इमरजेंसी कॉल मसूल हुई जो कि इस शहर से 30 या 40 मील के फासले से एक मरती हुई खातून की थी जो कि हमारे बहुत ही प्यारे भाई जॉर्ज कॉटर की वालदा थी। और मुझे पता था कि वहाँ बोसे खादम मौजूद हैं और एडिट भी बहुत बीमार थी। जब हम वहाँ थे तो खुदा भी मंजर पर आ गया और बेन कैटर को मौत के मुंह से निकाल लिया। बस हम खुदा के बहुत शुक्रगुजार हैं। और अब जल्दी ही पाक ईशा की इबादत का वक्त भी होता जा रहा है। मेरा ख्याल है वो इसे 12 बजे तक करने जा रहे हैं। आपने इसके लिए क्या वक्त मुकरर किया है? अच्छा, किसी भी वक्त। आज रात कितने लोग पाक ईशा लेना चाहते हैं? अपने हाथ दिखाएं। इतने लोग? ओ, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं एक दो बातें ही करना चाहता हूँ। मैं अपनी घड़ी यहाँ सामने रख लेता हूँ और 10 या 15 मिनट ही लूंगा, फिर पाक ईशा शुरू करेंगे। अब क्या आप उससे मोहब्बत करते हैं? आमीन। और मैं जानता हूँ आपका ये बहुत अच्छा वक्त था, क्या नहीं था? अरे भाई, क्या यहाँ भाई थॉमस किड और बहन किड दूर ओहायो से यहाँ आए हुए हैं? मेरा ख्याल है ये काफी आगे जा चुके हैं। ओ, ये अच्छी बात है। मुझे उम्मीद है ये टेप हो रहा है और मैं इसे ले सकूंगा। आप जानते हैं इन्होंने इसे तरक नहीं किया। वो कुछ ही दिनों में 100 साल के हो जाएंगे। मगर यही चीज मुझे हिम्मत देती है जब मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ। जरा सोचे, अब मैं खुद बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी पैदाइश से पहले ये अंजील की मुनादी करते थे और अब मैं खुद एक बूढ़ा आदमी हूँ और अब इस उम्र में ये अपनी आवाज से तो मुनादी नहीं कर सकते। ये अपना टेप रिकॉर्ड लेकर घर घर और अस्पतालों में जाकर अंजील की मुनादी करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। आमीन। मैं वाकई बहुत खुश हूँ इनके लिए भी और उन सब के लिए भी जिनकी आमद इन इबादत में होंगी। अब याद रखें, खुदावंद की मर्जी से जैसे ही इस चर्च की इबादत खत्म होगी हम आने वाली इबादत का ऐलान करेंगे जिनकी तारीख तकरीबन 10 फरवरी होगी। अगर खुदावंद की मर्जी हम पर हुई तो हम 8 या 10 दिन या 2 हफ्ते भी उन 7 मोहरों के मुकाशफे पर लगा सकते हैं। और इससे पहले कि हम इधर उधर से आने वाले लोगों को यहाँ से कार्ड जारी करें ताकि लोगों को काफी वक्त पहले इतला मिल सके, अगर वो आना चाहते हैं तो हम उन्हें यहाँ पाकर बहुत खुश होंगे। और हो सकता है अगर खुदावंद की मर्जी हुई तो वो एक बार फिर अपनी हजूरी हम पर जाहिर करेगा जिस तरह उसने जब हम पर 7 कलीसिया जमानों को सिखाता की थी। आप किसी न किसी के लिए हमेशा दुआ करते हैं तो मुझे भी हमेशा याद रखें क्योंकि मैं भी एक हूँ जिसे वाकई दुआ की जरूरत है। अब मैं खुद भी इन 10-15 मिनटों के लिए शर्मिंदा सा हूँ जो हमने कलाम शुरू करने से पहले ही ले लिए हैं, लेकिन आए अब कुछ लम्हे हम दुआ में सर झुकाएं। खुदावंद यीशु, ओ, किसी दिन जंग खत्म हो जाएगी और फिर कोई बीमार ना होगा जिसके लिए दुआ करनी पड़ेगी और तौबा करने के लिए कोई गुनहगार ना होगा। लेकिन बाप, आज जिस दिन में हम हैं, इसमें हमें काम करना है जबकि अभी दिन है, क्योंकि वो वक्त आने वाला है जिसमें कोई काम नहीं कर पाएगा। अब खुदावन, फक्त थोड़ा सा वक्त मुझे दे दीजिए क्योंकि साल के इख्तिताम पर अगर मैंने कुछ बातें ना की तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ऐ बाप, मेरी मदद कर। मैं ये दुआ मांगता हूँ कि जो भी मैं कह सकूँ वो तेरे लोगों के दिलों में बहादुरी का दरख्त बन जाए और आज रात जब हम पाक ईशा लेने के बाद घर जाएं तो हम ये महसूस कर सकें कि पाक ईशा से हमें कुव्वत मिली है। बनी इसराइल ने पहली बार मिस्र ही में पाक ईशा ली थी और 40 सालों तक बियाबान में ना तो उनके जूते टूटे और ना ही उनके कपड़े फटे, और उन 20 लाख लोगों में से जो बियाबान में भटक रहे थे एक भी कमजोर नहीं था। खुदावंद होने दे कि हम इन बातों को याद रख सके, जबकि हम आज रात उस अजीम घड़ी तक रसाई हासिल कर रहे हैं। हम ये दुआ यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अगर मैं उस अनुमान पर बोलना शुरू कर दूं जो मैंने दोपहर को शुरू किया था, तो हमें यहाँ सुबह के 5 बज जाएंगे। मगर मैं इस वक्त थोड़ा सा कलाम पढ़ना चाहता हूँ। शुक्रिया। इफिसियों 6:12 से फक्त थोड़ी देर के लिए पढ़ें। ये हिम्मत बढ़ाएगा, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हकूमत वालों और इख्तियार वालों से, और इस दुनिया की तारीकी के हाकमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से है जो आसमानी मकामों में है, शरारत की रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में है। और मैं इसमें से 10 या 15 मिनटों के लिए उन्वान लेना चाहता हूँ, या इस उन्वान को पुकारना चाहता हूँ, और वो है मुकाबला। एक मुकाबला कुव्वत की आजमाइश है, और हमें मुकाबले से अपनी कुव्वत को आजमाना होता है। और हम क्या करते थे, इंडियन लोग अपने दरमियान आग रख लेते थे, और रस्से के सिरे पर बहुत से आदमी खड़े हो जाते थे, और दूसरे सिरे पर भी बहुत से आदमी जमा हो जाते थे, और फिर रस्सा कशी का खेल शुरू हो जाता था, और कुव्वत का मुकाबला होता था, और हारने वाली पार्टी को आग की दूसरी तरफ खींच लिया जाता था। और अब हम जानते हैं ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें हम बुनियाद बनाकर और मुकाबले पर कुछ देर बोल सकते हैं, मगर मैं इन कुछ मिनटों में जल्दी से उस बड़े मुकाबले के बारे में बताना चाहता हूँ जो कलीसिया और शैतान के माबेन है। ये शैतान की उस बड़ी कुव्वत के बारे में है, और मैं खुदा की उस अजीम कुव्वत के बारे में भी बताना चाहता हूँ जो उसकी कलीसिया में है। अब ये अजीम मुकाबला बड़े सालों से चला आ रहा है। ये आसमान पर शुरू हुआ था और शैतान को जमीन पर गिरा दिया गया था, तब से वो खुदा के लोगों का दुश्मन बन गया है, और इसके बाद उसने अपनी कुव्वत और अपनी हिकमत अमली से खुदा के लोगों को आग के उस पार या अपनी आग में खींचना चाहा है। और हम जानते हैं कि ज्यादा कुव्वत किस में है, खुदा में है। और खुदा ने अपने लोगों को जो सबसे अच्छी चीज शैतान का मुकाबला करने के लिए दी है, वो उसका कलाम है। अब क्योंकि कलाम खुदा है, और खुदा से ताकतवर कौन है, बस कलाम खुदा है, और कलाम हमारी कुव्वत बन जाता है। खुदा कलीसिया में कुव्वत बनकर शैतान को खींच लेता है, और उसकी आग में उसे डाल देता है, और जीत जाता है। अब देखें, मरकत 16 में यीशु ने कहा, वो मेरे नाम से बद्रूहों को निकालेंगे। अब मुझे पता है ये बातें लोगों को कहानी सी लगती हैं, या इन्हें पुराने जमाने के मानने वाले कहते हैं, मगर ये बातें इतनी पुरानी भी नहीं है। लोग आज के जमाने में बद्रूहों का यकीन नहीं करते, मगर मेरे ख्याल में आपको अपने दुश्मन के बारे में मालूमात होनी चाहिए, और आपको उसे जानना जरूरी है ताकि आप उसके मुकाबले के लिए तैयारी कर सके, क्योंकि आपका सामना उससे होना है। आपको मालूम होना चाहिए उसमें कितनी कुव्वत है, और फिर उसके लिए तरबियत लेनी चाहिए जिसका मुकाबला करने आप जा रहे हैं, क्योंकि ये बात तो यकीनी है कि आपको उससे लड़ना होगा, और लिहाजा आपको मुकाबले के लिए तरबियत की जरूरत है। अब देखें, मुकाबले के लिए तरबियत लेना ऐसा ही है जैसे एक बॉक्सर तरबियत लेता है। वो ये देखता है उसका दुश्मन जिससे वो मुकाबला करने जा रहा है वो कैसा है। एक अच्छा लड़ने वाला अपने हरीफ के बारे में जांच पड़ताल करता है। वो देखता है कि उसकी कमजोरी क्या है और किस जगह पर वार करने में तेज है। वो ये देखता है कि वो सीधे हाथ से या उल्टे हाथ से या आगे से या पीछे से वार करता है। वो इन सब बातों का मुतालिया करता है, और अगर वो तेज लड़ने वाला है तो वो अपने हरीफ की तरह का एक अपना साथी लेकर उससे लड़ेगा। इस तरह वो उसकी कमजोरियों को जान जाएगा पेशतर उस जगह जाने से। और मेरा ख्याल है मसीही लोगों को इस तरह की तरबियत लेना बहुत अच्छा है, ये ठीक है। और अब अगर आप ट्रेनिंग शुरू करना चाहते हैं तो ठीक, यूहन्ना 3:16 के सुनहरी असूल से शुरू करें, इसी से शुरू करें, तो आप अपने आप को ठीक जगह पाएंगे और फिर हरीफ को हराने के लिए दाव पेच सीखेंगे, क्योंकि सभी जानते हैं आपको इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको ये सीखना है कि दुश्मन पर किस तरह हमला करना है। और ये हमेशा याद रखें कि खुदा अपने दुश्मन को शिकस्त देने के लिए कलाम का इस्तेमाल करता है, खुदा अपना कलाम इस्तेमाल करता है। अगर खुदा अपने लोगों को दुश्मन को मात देने के लिए कलाम से अच्छी चीज दे सकता तो वो जरूर देता। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, खुदा का पहला फैसला ही बेहतरीन होता है, उसे बाद में अपने फैसले बदलने नहीं पड़ते। बस बागे अदन में दुश्मन का मुकाबला करने के लिए जो हथियार दिया गया था वो कलाम था, उनको हिफाजत के लिए कलाम दिया गया था। और अब दुश्मन भी हमारी हिकमत अमली का मुतालिया करता है जो कलाम के साथ जुड़ी है। अब देखें, शैतान ने सारी बातों का इतनी बारीकी से मुतालिया किया था जब वो हवा के पास गया था। उसकी बेहतरीन हिकमत अमली ये थी कि उसने हवा के साथ कलाम पर बहस की। देखें, आपको कभी भी खुदा के कलाम पर बहस नहीं करनी चाहिए, सिर्फ उस पर ईमान रखें। कलाम की तशरी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ना ही खेंचतान करने की कोशिश करनी चाहिए। अब देखें, आप खुदा की खेंचतान नहीं कर सकते। खुदा कलाम है और कलाम पर फक्त ईमान रखें, और उस पर ईमान रखना ही हमारी कुव्वत है। सभी जानते हैं अच्छी जमीन पर गिरा बीज अच्छा ही फल लाएगा, और हमें फक्त कलाम ही लेना चाहिए। और अब देखें, हवा ने बहस को रोकना शुरू किया जब उसने कलाम से हवाला दिया कि खुदा ने कहा है तुम इसका फल ना खाना, क्योंकि जिस रोज तुमने खाया उस रोज तुम मर जाओगे। और शैतान उससे मुत्तफिक हुआ, उसने कहा ये वाकई सच है। उसने ये भी कहा देखें, तुम्हें कुछ नई रोशनी की जरूरत है, तुम्हें उससे कुछ फर्क जानना चाहिए जो खुदा ने कहा है, और अगर तुम कुछ इस तरह कर लो तो तुम थोड़ा और होशियार बन जाओगी, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। मगर हवा ने कहा ठीक है, मगर हम इस तरह मर जाएंगे, खुदा ने कहा है। शैतान ने कहा ओ वाकई, देखे यहाँ है आप, फक्त इतना कहना ही काफी था, तुम वाकई ही नहीं मरोगे, मगर खुदा ने कहा था तुम मर जाओगे, और ये मामला तय हो गया। और इस तरह रस्सा कशी की जंग हारने के बाद सारी बनीनो इंसान को मौत में धकेल दिया गया, क्योंकि हवा ने खुदा के कलाम के खिलाफ दलील को सुन लिया। ये बड़ी शर्मनाक बात थी जो हवा ने की, मगर ये तो माजी की बात है। लेकिन अब हम फिर से महफूज हैं, क्योंकि हमारा नाता मसीह यीशु से जुड़ गया है। हम ये जानते हैं खुदा ने हमें बेहतरीन तहफ्फुज फराम किया है, और वह है सादगी से उसके कलाम पर भरोसा करना। आप जानते हैं आज बहुत से लोग कहते हैं शैतान जैसी चीज नहीं है, वो ईमान रखते हैं कि ये सिर्फ एक ख्याल है, वो ऐसा ही ईमान रखते हैं। और ऐसे लोग भी हैं जो ये ईमान रखते हैं कि एक अच्छा ख्याल पाखरू है और एक बुरा ख्याल अबलीस है। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो बाइबल रुलकुस के बारे में फरमाती है, उसने कहा जब वो यानी रुलकुस आएगा, और वो एक जाती इसम है, समझे, लिहाजा वो एक शख्सियत है, और अबलीस भी एक शख्सियत है, और बदरूहे भी एक शख्सियत है। जी हाँ, ये बदरूहे हैं, और ये कई तरीकों से आती है, मगर लोग ये सोचते हैं ये कोई पुराना ख्याल है। अभी कुछ हफ्ते पहले एक शख्स मुझसे बहस कर रहा था, उसने कहा आप जानते हैं आप क्या करते हैं, आप लोगों के ज़हन को किसी सोच से भर देते हैं, और जब आप उन्हें ये बातें बताते हैं तो ये ख्याल को तब्दील कर देती हैं। इसी तरह का एक वाकया मुझे एक मर्तबा इंडिया में भी पेश आया था, जब मैं उन मजहबी आदमियों से मिला था, और वहाँ हमारी बहुत बड़ी कन्वेंशन थी। मेरा ख्याल है जिन बड़ी हाजरीन में मैंने पैगाम दिया है उनमें से एक थी, जो 5 लाख लोगों पर मुश्तमिल थी, और मैं रूह के वसीला से लोगों के दिलों के भेद बताने लगा, और सभी देख रहे थे कि पाक रूह लोगों के बारे में तरह तरह की बातें बता रहा था, और मैं उन्हें लोगों में से बुला रहा था, और उनके ख्याल में उन्हें बता रहा था, तो वहाँ मजहबी लोग और राजस भी मौजूद थे। उन्होंने कहा ये शख्स इनके जेन पढ़ रहा है, बस उन चंद लम्हों में तकरीबन दुआया कतार में से 5 या 6 आदमी ही गुजरे थे और फिर एक अंधा शख्स मेरे सामने आ गया जो मुकम्मल तौर पर अंधा था और उसकी आंखें मेरी इस शेड की तरह सफेद थी और मैंने कहा अब यहाँ एक अंधा आदमी है जिसे देखकर कोई भी कह सकता है कि ये अंधा है और मैंने कहा अगर मैं इसके लिए कुछ कर सका तो जरूर करूंगा मगर ये मैं सिर्फ उसी नेमत से कर सकता हूँ जो मुझे बताए कि इसने क्या किया है और अगर खुदा मुझे बता दे कि इसने क्या क्या किया है तो वो यकीनन ये भी जानता है कि आगे क्या होगा। बस मैंने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, मैंने कहा अब देखें, ये सूरज का पुजारी है, ये शख्स 20 साल से अंधा है। और जब मुतरजम ने तर्जमा किया तो पता चला कि ये बात सच है। और फिर मैंने कहा ये शादीशुदा आदमी है, इसकी बीवी इससे छोटी है और इसके 2 बेटे हैं, एक 7 साल का और दूसरा 9 साल का। उनके नाम भी मैंने बता दिए और सब बातें बिल्कुल सच निकली। तब हाजरीन में से जिस जगह लोग मौजूद थे एक लहर सी उठी और ये कहा गया ये ज़हनी मामला है, ये किसी किस्म की ज़हन को पढ़ने वाली नफ्सियात है। तब मैंने सोचा खुदावंद मुझे आपकी मदद की जरूरत है, खुदावंद मुझे आपकी मदद की जरूरत है। ये लोग आपकी नेमत को टेलीपैथी कह रहे हैं और ये ऐसा नहीं है और खुदावंद तू ये जानता है। और फिर भी मैंने कलाम में से ये बताया कि यीशु तब तक कुछ नहीं करता था जब तक बाप उसे दिखाता नहीं था। और फिर मुड़कर जब मैंने उस आदमी की तरफ देखा तो मैंने रोया में देखा कि वो मेरी तरह ठीक आंखों वाला है। मैंने सोचा यही ठीक वक्त है। मैंने कहा ये आदमी सूरज का पुजारी है और अब ये अंधा हो चुका है। और मैंने कहा अब यहाँ मुसलमानों के मौलवी बैठे हुए हैं और यहाँ पर सिखों, जिनियों, बुद्धा और मुख्तलिफ मजहब के उलमा भी बैठे हुए हैं। देखे अब इस आदमी को आंखों की रोशनी चाहिए। अब आपको ये कहना पड़ेगा कि इस आदमी ने खालिक की नहीं बल्कि मखलूक की पूजा की। मैं भी ये मानता हूँ, लेकिन आज रात हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। मैंने कहा और हम मैंने कहा मुझे आज एक जैन मंदिर में सैरो तफरी के लिए ले जाया गया और वहाँ 17 मुख्तलिफ मजाहिब के लोग थे और मेरा इंटरव्यू लिया गया और उनमें से सभी लोग मसीह के खिलाफ थे, हर एक खिलाफ था। और मैंने कहा अब यहाँ आप में से बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद थे, अब अगर आप लोग मसीह को गलत समझते हैं तो ठीक है, मगर ये आदमी इस घड़ी ठीक होना चाहता है। और हकीकत में मखलूक को बनाने वाला खुदा जिसने इस दुनिया को बनाया फक्त वही इसकी आंखों को रोशनी दे सकता है और यही मुनासिब बात है। और मैंने कहा अब यहाँ आप लोगों में मारूफ मजहब के मुसलमान भी हैं और अगर कोई मौलवी यहाँ आकर इसकी आंखें ठीक कर दे तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा, या कोई बुद्धा का पुजारी इसकी आंखों में रोशनी लाकर दिखाए, क्योंकि कहीं पर तो खुदा होगा जिसने इसे बनाया है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी का तो खुदा होगा, क्योंकि बगैर खालिक के मखलूक नहीं होती और इन आंखों में रोशनी फक्त खालिक ही ला सकता है। इसको अंधा हुए 20 साल हो गए हैं क्योंकि ये सूरज की पूजा करता था और सोचता था मैं सूरज की पूजा करने से फरदोस में जाऊंगा। इसने जहालत से ऐसा किया। मैंने कहा आप बुद्धा के पुजारी इस बारे में क्या कहते हैं? आप कहेंगे इसकी सोच का तरीका बदल देंगे, आप कहेंगे ये गलत था, वो अपने मुर्दा बाप दादा की पूजा करता रहा है। और मैंने कहा अब आप ये सोचेंगे और आप कहेंगे कि वो गलत था, लेकिन आप इसके लिए क्या करेंगे? सिर्फ इसकी सोच बदल देंगे? फिर मैंने पूछा मुसलमानों आप क्या करेंगे, आप भी इसकी सोच बदल देंगे? और सिख लोग और जिन लोग और वगैरह वगैरह आप भी सोचने का तरीका ही बदलेंगे? मैंने कहा हमारे मुल्क अमेरिका में भी ऐसा ही है, मेथोडिस्ट चाहते हैं कि सभी बैप्टिस्ट मेथोडिस्ट बन जाएं और पेंटिकोस्टल चाहते हैं कि सभी मेथोडिस्ट लोग पेंटिकोस्टल बन जाएं। ये तो सोच की तब्दीली है, लेकिन हम यहाँ इस बाबित बात नहीं कर रहे, हम यहाँ खुदाए खालिक की बात कर रहे हैं। और मैंने कहा यकीनन खालिक बोलेगा और अगर मुझे रोया ना मिली होती तो मैंने ये कभी भी नहीं कहना था। अब देखें, मैंने कहा अब अगर कोई एक खुदा है तो आए और इसकी आंखों को रोशन करे। और मैंने कहा अब मैं हर एक पुजारी और पंडित को चैलेंज करता हूँ, या कोई भी पारसा आदमी आए या जो भी चाहे आए और यहाँ आकर इसकी आंखों को ठीक करे और रोशनी दे, तो मैं आपके मजहब को कबूल कर लूंगा। और आप एक शख्स को बदल लेंगे। और वहाँ लोगों के झुंड में इतना ज्यादा सन्नाटा पड़ गया जितना शायद मैंने कभी भी सुना हो, समझे? कोई शख्स भी सामने ना आया। और मैंने कहा, आप इसके बारे में इतने खामोश क्यों हैं? मैंने कहा, इसकी वजह ये है क्योंकि आप ये नहीं कर सकते और ना ही मैं कर सकता हूँ, लेकिन आसमान का खुदा जिसने अपने बेटे यीशु मसीह को जिंदा किया और जिसके हम सब खादिम हैं, उसी ने मुझे रोया में दिखाया है कि ये आदमी अपने आंखों की रोशनी फिर से पाने जा रहा है, समझे? मैंने कहा, अगर ऐसा ना हुआ तो आप मुझे अभी इसी घड़ी इंडिया से निकाल देना, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो फिर आप सब अपनी जिंदगियां यीशु मसीह को दे देना। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर ये अंधा आदमी ठीक हो जाए तो आप में से यहाँ कितने हैं जो यीशु मसीह को अपनी जिंदगी देंगे? आपने अपने पुजारियों को देख लिया है, कोई भी इस शख्स की आंखें ठीक नहीं करने आया, जबकि वो अपने अपने मजहब की बड़ी बड़ाई करते हैं कि उनका मजहब सबसे बड़ा है और अजीम है, तो वो क्यों नहीं आए? कोई यहाँ सामने आकर क्यों कुछ नहीं कहता? कोई भी ना आया। मैंने कहा, आप लोग जो बाहर दूर बैठे हैं, इस अंधे आदमी को देख रहे हैं जो यहाँ खड़ा है? और वहाँ ऊपर एक डॉक्टर आ गया जिसने उसकी आंखों का मुआयना किया और अपने सर को झटकते हुए उसने कहा, ये बिल्कुल अंधा है। मैंने कहा, यकीनन ये अंधा है, लेकिन मैंने कहा, अगर खुदा इसकी आंखें खोल दे तो आप में से कितने लोग यीशु मसीह की खिदमत करेंगे? और जहाँ तक मैं देख सकता था, मैंने देखा काले काले हाथों का एक समुन्दर था। उस आदमी की तरफ मुड़ते हुए मैंने कहा, खुदावन यीशु, इन लोगों को पता चल जाए कि तू ही खुदा है। और उसी घड़ी उस आदमी ने मेरी गर्दन को मजबूती से पकड़ लिया और वहाँ बम्बई के बैठे हुए मेयर की गर्दन को पकड़ लिया, क्योंकि वो ठीक हो गया था और वो देख सकता था जिस तरह कोई भी देख सकता है। ये क्या है? ये दरअसल कुवत है। खुदा खुदा है और शैतान शैतान है। और अगर आप यकीन नहीं करते कि शैतान है, जब मैंने खिदमत शुरू की थी तो अंधा धुंध हर रोज मुझे उसका सामना करना पड़ता था। इसलिए मुझे मत बताएं कि शैतान नहीं है, मैं इसके बारे में बेहतर जानता हूँ। बस मुझे पता है कि अबलीस है, क्योंकि मुझे हर रोज उससे लड़ना पड़ता था। और आपको उसका सामना करने के लिए तरबियत लेना जरूरी है, नफ्सियाती तरबियत नहीं, तालीमी तरबियत नहीं, बल्कि रूल कुछ से तरबियत याफ्ता होना है। खुदा की कुवत उसके कलाम के जहूर में है। अपने दुश्मन को पहचाने हो वो कितना जालिम है। मुझे ये कितना अच्छा लगेगा कि मैं इसके बारे में और बताऊं। बाइबल में वापस चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि एक आदमी का आमना सामना दुश्मन से हुआ था, किस तरह उन लोगों ने अपने आप को दुश्मन के मुकाबला में खुदा के कलाम से महफूज कर रखा था। नूह को भी ऐसा ही तजर्बा हुआ था, जब खुदा ने उसे कहा था बारिश होने को है, और उस वक्त साइंस और खुदा के कलाम के माबैन मुकाबला था। साइंस ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, खुदा ने कहा ऐसा होगा, आमीन। आज भी वही बात है, ऐसा होगा, ऐसा होता है। बदरुए आज भी है, लेकिन यीशु उन्हें बाहर निकाल देता है, और वो ये करने का इख्तियार अपनी कलीसिया को भी देता है। तुम मेरे नाम से बदरुओं को निकालोगे। एक दिन उसने एक खूबसूरत खातून से सात बदरुए निकाली थी, और यीशु ने कहा था, जब किसी आदमी से बुरी रूह निकलती है तो वो सूखे मकामों में घूमती है, फिर जब वापस आती है तो सात और बदरुहे अपने साथ लेकर आती है। अब इससे ये साबित होता है कि जब उस आदमी को बदरुहों से पाक किया गया था तो उसके अंदर कुछ था जो निकाला गया, उसमें से अबलीस को निकाला गया। जब अबलीस वहाँ से चला गया तो अब खुदा को मौका मिलता है कि उसमें आ सके। पर जैसे ही अबलीस निकल जाए तो पाक रूह को मौका दे कि वो अंदर आ जाए। इस मकाम को फक्त खाली मत छोड़े। अगर आप तौबा करके फिर गुनाह करना जारी रखते हैं तो आपकी हालत पहले से बुरी हो जाएगी, लेकिन आप उस मकाम को खाली ना छोड़े जहां शैतान कभी रहता था और कब्जा किए हुए था। उसको खुदा के पाक रूह से भर दे, और फिर आपके अंदर खुदा के कलाम की कुव्वत आ जाएगी और बदरुहें निकल जाएंगी। मुकाबला जारी है, शाम की रोशनी चमक रही है, खुदा का पाक रूह यहाँ मौजूद है। और अब वक्त तकरीबन 3 मिनट का वक्त बचा है, फिर सीटी बजाई जाएगी और आधी रात हो जाएगी। फिर हम इस इमारत को छोड़कर अपने मुख्तलिफ मकामों की जानिब और अपने घरों की जानिब गामसन होंगे, और जब हम बाहर लोगों से मिले और इस दुनिया से मिले, तो फिर उस वक्त हम ऐसे ना रहे जैसे हम थे। आज हम उसके जी उठने की कुव्वत से भर जाए। काश हम यीशु मसीह के नाम के झंडे को ऊंचा उठाकर जाए और उसके कलाम पर ईमान रखते हुए और दो धारी तलवार को थामे हुए जाए। हमारे पास सिपर और खुदा के सब हथियार हो जब हम दुश्मन से मुलाकात करें, क्योंकि वो दुश्मन दिन ब दिन मजीद ताकतवर होता जा रहा है। जैसे ही दुश्मन सैलाब की तरह सामने आता है, तो उसका सामना करने के लिए खुदा का रूह उसके मुकाबले में खड़ा हो जाता है। अगर हम आखिरी वक्त की सारी बातों को पूरा होता हुआ देख रहे हैं और खुदा के सारे पोशीदा भेद हमारे सामने जाहिर हो रहे हैं, तो अब हम और ज्यादा कुव्वत पाने की तलाश में है, जो के उठाए जाने की कुव्वत है। दुश्मन की कुव्वत से बढ़कर मिलनी चाहिए ताकि उठाए जाएं और कलीसिया जलाल में चली जाए। हमें हर हाल में वो कुव्वत पानी है। आए हम 63 में एक चैलेंज के साथ इस तरह मिले जिस तरह जिंदा खुदा के खादम होते हैं। हम पुराने सदरक मिसक और अब्दनजू की तरह बन जाएं, और इस दुनिया के शयातीन के आगे हमें झुकना नहीं है, और जो कुछ आज हमने सीखा है उसके मुताबिक चले और मुकाबला जारी रखें। जबकि हम इन सीटियों को सुन रहे हैं, तो मुझे आज रात ऐसा महसूस हो रहा है जब दाऊद उस गर्म भयानक रात में उस जाड़ी में लेटा हुआ था और दुश्मन उसके ऊपर आ खड़ा हुआ था। दाऊद के लिए वो कैसा वक्त होगा, उसके लिए कैसा वो वक्त था जब वो वहाँ लेटा हुआ था। वो उस वक्त कुछ नहीं कर सकता था, वो नहीं जानता था कि क्या करे, क्योंकि वो दुश्मन के सामने कुछ भी नहीं था। लेकिन उसने हवा की एक सनसनाहट गाड़ी के ऊपर सुनी, तब वो जान गया कि खुदा उसकी तरफ से आगे गया है, और तब वो जंग के लिए चला गया। और मैं भी आज रात दाऊद की तरह महसूस कर रहा हूँ। आज रात के पैगाम के बाद मैं अपने आप को इतने तारीख वक्त में पाता हूँ जितना कि मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं पाया। मुझे वैसे ही महसूस हो रहा है जैसा यशायाह ने हैकल में फरिश्तों को देखते हुए महसूस किया था। मैं तो नेजसलब इंसान हूँ और नेजसलब लोगों के दरमियान रहता हूँ। लेकिन सुने, मुझे इन हालात का मुकाबला तो करना ही है, और मैं बस शहतूत की जाड़ी के ऊपर सनसनाहट की आवाज सुनने का मुंतजिर हूँ, ताकि जहाँ भी दुश्मन मिले उसका मुकाबला करूँ। खुदा ऐसा करने में हमारी मदद करे। और अब मैं सोचता हूँ कि 12 बजने में 1 मिनट रह गया है, और 62 को अब अपने सारे माजी के साथ गुजर जाने दीजिए। अब आए हम सब अपने कदमों पर खड़े होते हैं, हम में से हर एक खड़ा हो जाए, मुकाबला जारी है। आप सब इसमें शामिल हैं। पालूस ने कहा, पुरानी चीजें जाती रही, उन्हें भूल जाए। पिछले साल की सभी गलतियों को भूलकर मुझे आला बलाहट के निशान की तरफ बढ़ना है। मुझे मेरी सभी गलतियों के लिए जो मैंने पिछले साल की है, मुझे उनके लिए माफ कर दीजिए। खुदा मुझे माफ करे, और कलीसिया भी मुझे माफ करे, और उस खिदमत के लिए जो मैं दुरुस्त नहीं कर पाया, मैं महसूस करता हूँ, ऐ खुदा मुझे इसके लिए माफ कर दे। कलीसिया मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर दे, और मैं मसीह यीशु में अपनी आला बुलाहट के निशान की तरफ बढ़ूंगा। कल क्या होने को है मैं नहीं जानता, मगर मैं ये जानता हूँ कि 1963 उसके हाथों में है। आए अब हम खुदा की तरफ हाथ उठाकर अपने लिए दुआ करें और अपनी गलतियों का इकरार करें और आने वाले साल के लिए खुदा की मदद मांगे। आसमानी बाप, जबकि हम यहाँ खड़े हैं और हमारे दिलों में उठते कई बुरे ख्याल अब मर रहे हैं और पिछले साल की गलतियों का इकरार कर रहे हैं, और अब जबकि हम 62 को अलविदा और 63 की पैदाइश में रसाई हासिल कर रहे हैं, ऐ खुदा काश हम इस आला सीढ़ी पर एक कदम और आगे रख सके, ताकि हम यीशु मसीह और उसके प्रोग्राम को जान सके। खुदावंद होने दे कि हर एक दुआ करे जबकि पुराना साल मर रहा है और नया साल जन्म ले रहा है। होने दे कि ये पुराना गुनाह का इंसान और बेएतकादी हमारे दिलों में मर जाए और 1963 हमारे लिए एक नया जन्म ताकतवर हवा की तरह लेकर आए, जिससे हम बढ़ जाए और जिससे हम मसीह में एक नई मखलूक बन जाए। हमें अच्छे खादम बना, हमारे माजी को माफ कर दे और हमारे मुस्तकबिल को बरकत दे। ऐ खुदावंद खुदा, अपने ताकतवर हाथ से ऐ यहोवा हमारी रहनुमाई कर। इन सब खादमों को बरकत दे, सब इंतजामिया को बरकत दे, सब जायरीन को बरकत दे। खुदावंद हमारा साथ दे, हम तेरे खादम हैं और 1963 के लिए हम पूरे तौर पर अपने आप को तेरे हवाले करते हैं, ताकि तेरे पाक रूह की ताकत बड़ी आजादी के साथ हमारे दरमियान और हमारी जिंदगियों में आ सके। खुदा हमें माफ कर, हमारी ये दुआ है कि हमें माफ कर और हमारी मदद कर। ताकतवर इंसान खड़े हो गए हैं, ईमान के जंगजू खड़े हो गए हैं। खुदावंद इस साल हमारे ऊपर वो पोशीदा मन जो यस्सु चट्टान के नीचे रखा हुआ है वो हम पर खोल दे, ताकि ऐ खुदा हम तेरे प्रोग्राम को देख सके। खुदावंद हमारे अंदर के मखरूत के ऊपर वाले हिस्से को खोल दे और चोटी के पत्थर यस्सु मसीह को हम पर आने दे। होने दे के उसकी अजीम मुकद्दस बरकत हम पर अंडेली जाए। होने दे के पाक रूह की आग हम सब पर आ जाए। काश जी उठने की कुव्वत हम पर जाहिर हो जाए। ऐ खुदा हम कितना आज रात तेरा शुक्रिया अदा करें। ऐ खुदा हम तेरे हैं। ऐ खुदा हम पूरी तरह से अपने आप को तेरे सुपुर्द करते हैं। जबकि मैं आगे बढ़ रहा हूँ और नहीं जानता कहाँ, कैसे और क्या करना है, पूरी तरह से तुझ पर भरोसा करता हूँ। कादरे मुतलिक खुदा, तू मेरी रहनुमाई कर, मैं तेरा नकम्मा खादम हूँ। कादरे मुतलिक, हो सके तो मुझे अपने जलाल और इज्जत के लिए इस्तेमाल कर। बाप, दुआ को कबूल कर, हमारी दुआएं कबूल कर, हमारी काविशों को बरकत दे, बीमार और परेशान हाल को रूहानी और जिस्मानी शिफा दे, हमें अपने खादम बना ले। हम मट्टी है, तू कुम्हार है, हमें अपने तरीके से ढाल, ताकि हम यीशु मसीह से ऐसे जुड़ सके जैसे उसके बदन का हिस्सा है। उसके नाम और अंजील की खातिर हम इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, सुम आमीन।
My people, I would say unto thee that I am the one and only God, and beside me there is none other. I am the Lord of creation. I am the Word that became manifested unto thee. I am the Word that comes before thee even this night by the power of the Holy Ghost. Did I not say that I would come in like manner? Have I not fulfilled my word, every dot and every line? O my people, I say unto thee, look up, for thy redemption draweth nigh, and it is even at the gates. I say unto thee that if thou shalt continue to humble thyself and not lean unto thine own understanding, but follow me, that thou shalt truly be found in favor in my sight. I say unto thee that thou hast seen my glory before thee, and thou shalt continue to see my glory if thou shalt remain in the truth as thou hast heard it. I say unto thee that many strange things may happen in the days to come. May thy word be established in thy hearts. May it be written in thy life that thou shalt not turn to the right nor to the left, but keep thine eyes single unto me, for I am a jealous God. And the days are coming to an end when all truth shall be revealed unto thee, and thou shalt stand alone, and yet thou shalt yet be together. And I say unto thee that none shall go away, none shall be left desolate, none shall be left without a guide, none shall be left without truth, none shall be left without comfort, none shall be left without their God, for I am thy God, and I am in thy midst. I see my people, I have heard their afflictions, I hear their cries unto me, and I shall deliver thee, even as I delivered my people of old out of Egypt. I shall deliver thee,
I shall be with thee. Stand fast and move not. Thus saith the Lord.
तेरा शुक्र हो खुदा बाप, हम तेरी इस नए साल की नसीहत के लिए शुक्रगुजार हैं। इससे हमारी उम्मीदें बड़ी हैं और ये जानकर तसल्ली मिली है जो इन आदमियों के वसीले गैर जुबान में बातें की गई हैं, जो ये नहीं जानते थे। इससे साबित हो गया है कि ये पैगाम सच्चा है और तू हमसे कह रहा है कि इसके साथ खड़े हो जाएं। हम अपनी पूरी अकल से जितनी भी है खुदावंत तेरे साथ और तेरे कलाम के साथ खड़े रहेंगे। हमें उसके नाम के वसीला से कबूल कर ले जिसने हमें यूँ दुआ करना सिखाया। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, जैसी तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ कर, और हमें आजमाइश में ना डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे और कायम रखे। अब वो लोग जिनको अपने घरों में जाना जरूरी है, अब 5 मिनट गुजर चुके हैं, 63 के 5 मिनट गुजर चुके हैं, आप जा सकते हैं। अब खुदा आपको बरकत दे, और आप लोग जो पाक ईशा में शामिल होना चाहते हैं, आप यहीं ठहरे, हम आपको यहाँ पाकर खुश होंगे। ये पाक ईशा सिर्फ करीबी लोगों के लिए नहीं बल्कि हर एक ईमानदार के लिए है जो मसीह से रफाकत रखता है। आपके ठहरने और हमारे साथ पाक ईशा लेने के लिए हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम नए साल का सफर शुरू करने जा रहे हैं, और इसराइल ने अपना सफर शुरू करने से पहले ये किया था, एक बड़े को जबा करके कड़वे सागपात के साथ खाया था और फिर अपना सफर शुरू किया था। और मैं सोचता हूँ ऐसा आज रात करना बहुत मुनासिब है। बड़ा जबा हो चुका है, तैयार किया जा चुका है, फसा तैयार है और आधी रात का वक्त है। आप जानते हैं उन्होंने ये खाना आधी रात ही को खाया था, हम भी वैसा ही करेंगे। आप में से जो पाक ईशा लेने के लिए रुकना चाहते हैं और हमारे साथ सफर शुरू करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। खुदा आपको बरकत दे, और आप जो घर जाना चाहते हैं घर जा सकते हैं, और जब तक हम दोबारा नहीं मिलते खुदा आपके साथ हो। आमीन। बाकी सभी लोग तशरीफ रखें और फिर हम पाक ईशा लेंगे। बहन आपको ठीक है जनाब। जब हम मिलते हैं यीशु के कदमों में, जब हम मिलते हैं जब तक हम दोबारा मिले, खुदा आपके साथ हो। आए हम दोबारा इसे गाते हैं जबकि हम इंतजार कर रहे हैं, और आप जानते हैं उनके लिए जो जा रहे हैं, क्योंकि फिर खामोशी हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही पाक रस्म है। थोड़ी देर में मैं कलाम में से कुछ पढ़ने जा रहा हूँ जो कि बहुत 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 ही अच्छा है, और अब आए हम इस गीत को दोबारा गाते हैं। जब हम मिलते हैं एक दूसरे से हाथ मिलाए। अगर कोई यहाँ है जिसने अपनी जिंदगी में कोई गलती की है, अगर वो शख्स यहाँ मौजूद है जिसकी आपने गलती की है, तो उसके पास जाकर माफी मांगे। जब तक हम मिलते हैं खुदा, क्या मेहरबानी से पियानो बजाने वाला आ जाएगा आपके साथ जब हम दोबारा मिले? भाई नेवल, ये सारा प्रोग्राम मैं आपके हाथों में देता हूं। दोबारा मुलाकात तक खुदा आपके साथ हो। خدا آپ کو برکت دے بھائی. وہ آپ کی فکر کرتا ہے, وہ آپ کی فکر کرتا ہے. دھوپ اور سائے میں وہ آپ کی فکر کرتا ہے. آئے اسے دوبارہ گائے. وہ آپ کی فکر کرتا ہے, وہ آپ کی فکر کرتا ہے. دھوپ اور سائے میں وہ آپ کی فکر کرتا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے, جبکہ لوگ مطمئن ہو رہے ہیں تو اسے دوبارہ گاتے ہیں. وہ فقط اپنی آنکھیں بند کر لیں. آپ کے لیے وہ آپ کی فکر کرتا ہے. دھوپ اور سائے میں وہ آپ کی فکر کرتا ہے. آسمانی باپ, ہم بہت خوش ہیں کہ ہم نے سچائی کو حاصل کر لیا ہے. ہماری تاریخ گھڑیوں میں یا دھوپ میں وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا اور نہ بھولتا ہے. ہم بہت زیادہ خوش ہیں کہ آپ نے ہمارے اعتماد کو بڑھا دیا ہے, جو یسوع کے لہو کی راست بازی کے سوا اور کچھ نہیں ہے. خداوند, ہم دنیا کی شہرت پر بھروسہ نہیں رکھتے. ہم بھروسہ کرتے ہیں, مگر ہم مٹھاس کے فریم کی جسارت پر بھروسہ نہیں کرتے, بلکہ مکمل طور پر یسوع نام پر بھروسہ کرتے ہیں. اے باپ, ہم تیرا کیسے شکریہ ادا کریں. اب ہم اس رسم میں شریک ہونے جا رہے ہیں جو فطری شرائط تو نے ہمارے لیے چھوڑی ہیں. ان میں سے ایک بپتسمہ ہے, دوسری پاکیشہ ہے, اور تیسری پاؤں دھونا ہے. اے خدا, ہم بڑی سنجیدگی سے آتے ہیں, یہ جانتے ہوئے کہ یہ برا فسا کا برا ہے, اور تیرے بچوں کے لیے بڑا بیابانی سفر آگے ہے. اس سے پہلے اس فسا کے برے کو کھایا جائے, دروازے کی چوکٹ پر لہو کا لگانا ضروری ہے. اب اے خدا, ہمارے دلوں کو پرکھ. خداوند, کیا وہاں لہو ہے؟ اگر وہاں نہیں ہے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ تو اب وہاں اپنا لہو انڈیل دے, اور لہو سے ہمارے گناہ دور کر دے اور انہیں ڈھانپ دے. اور خداوند, جو گناہ ہم نے دنیا میں کیے ہیں وہ ہم سے الگ ہو جائیں, تاکہ ہم پاک بن کر اپنے باپ کی نمائندگی کر سکیں. اب جب کہ ہم اپنے برے کے بہائے گئے خون اور بدن کو لینے کو ہے, جو کہ ہمارا نجات دہندہ اور خدا کا بیٹا ہے, تو تو ہمارے دلوں کو پرکھ. اے باپ, جب کہ ہم کلام پڑھتے ہیں تو تو ہمیں اپنا لے. ہم اس دعا کو برے کے نام یعنی یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں. آمین. اب میں پہلا کرنتھیوں کے 11 باب میں سے چند آیات پڑھنا چاہتا ہوں. 23 آیت سے شروع کرتا ہوں. پالوس یہاں کرنتھیوں کی کلیسیا سے کیا کہہ رہا ہے؟ کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا, یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے, میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو. اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا, اور اس کے بعد اس نے پیالہ لیا اسی طرح. معذرت چاہتا ہوں, مجھے دوبارہ پڑھنے دو. اور اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا, یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے, جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو, کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے. اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا. بس آدمی اپنے آپ کو ازما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے. کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا. اسی سبب سے تم میں بتیرے کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی گئے. اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے, لیکن خداوند ہم کو سزا دے کر تربیت کرتا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہرے. پس اے بھائیو, جب تم کھانے کے لیے جمع ہوتے ہو تو ایک دوسرے کی راہ دیکھو. اگر کوئی بھوکا ہو تو اپنے گھر میں کھا لے تاکہ تمہارا جمع ہونا سزا کا باعث نہ ہو, اور باقی باتوں کو میں آ کر درست کر دوں گا. میرے خیال کے مطابق انتہائی سنجیدہ وقت ہے. اس کے بارے میں ایسا ہی کہا گیا تھا جب پہلی مرتبہ شہر ربانی ہوئی تھی اور پاؤں دھوئے گئے تھے. آج رات یہ نہیں دھوئے جا سکتے کیونکہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے. پانی کے سب نل بند ہیں اور اسے ادا کرنے کے لیے آج رات جگہ کی سہولت بھی میسر نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے ساری جگہ عبادت کے لیے آج رات صرف کر دی ہے تاکہ لوگ بیٹھ سکے. میرا خیال ہے یہ لوکا کا بیان ہے کہ وہ گیت گاتے ہوئے نکلے, اور ہم بھی ویسا ہی کریں گے جیسا انہوں نے کیا تھا. لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہ کس چیز کی نمائندگی ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے شروع میں جب اسرائیل نے پہلی مرتبہ یہ کیا وہ اس وقت مصر میں تھے, اور پھر وہ موجودہ سرزمین پر گامزن ہوئے, اور ایسا ہی کچھ آج ہم محسوس کر رہے ہیں, اور ہم بھی موجودہ سرزمین کی راہ میں ہیں اور ہمارا سفر ابھی باقی ہے. جب موت کا فرشتہ وہاں سے گزرا تو اسرائیلیوں کو ایک نشان دیا گیا تھا, اور دروازے پر خون کا ہونا ضروری تھا ورنہ گھر کا پہلوٹا یا بڑا بچہ مار دیا جائے گا. اس کا تصور یا درست مطلب یہی تھا کہ پہلے لہو وہاں لگایا جائے. کیا آپ نے غور کیا کہ پالوس کس طرح اس بات کو بیان کرتا ہے؟ اگر کوئی نامناسب طور پر اس میں سے کھائے یا پیئے تو وہ خداوند کے بدن کا قصوروار ہوگا, جس کا مطلب یہی ہے یعنی جو غیر مناسب طور پر پاک عشاء میں شامل ہوگا اس کی موت بلکہ روحانی موت ہو جائے گی. اگر شراب پیتے رہنا, برائی کرتے رہنا اور دنیاوی زندگی گزارتے رہنا اور پھر خداوند کی میز پر بھی آنا ہے, ہمیں کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب ہمیں اپنے دلوں کو پاک کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو صاف کرنا ہے اور ذہن کو برے خیالوں سے صاف کرنا ہے تاکہ ہم خداوند کی میز پر بڑے احترام اور پاکیزگی سے آ سکیں. جیسے کہ ہم جانتے ہیں اس کے وسیلے ہم اپنی قربانی کے ساتھ جڑتے ہیں جو کہ یسوع مسیح ہے, وہی صرف ہماری نجات ہے. اور اب آج رات ہم اس کو اس طرح لیں گے, ایلڈروں میں سے کوئی ایلڈر یہاں کھڑا ہو جائے, بھائی زیبل. اور میرا خیال ہے بھائی زیبل آج رات آپ پہلے لوگوں کو ممبر سے بلائیں تاکہ پہلے یہاں اوپر والوں کی قطار بن سکے, یا جیسے بھی آپ کی مرضی ہے. اب جیسے ہی ہم اس پاک عشاء پر برکت مانگ لیں گے پھر بھائی زیبل آپ کو بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے. یہ خاص روٹی ایک مسیحی کے وسیلہ سے تیار کی گئی ہے, بے خمیری روٹی ہے, اور جیسے ہی آپ اسے کھائیں گے تو آپ محسوس کریں گے یہ بہت روکھی اور سوکھی ہوئی ہے. یہ دبے دار اور ٹوٹی پھوٹی سی ہے, جس کا مطلب ہے ہمارے خداوند یسوع کا بدن توڑا اور گائل کیا گیا. ہو اب میں ایسا سوچتا ہوں تو میرے دل کی دھڑکن رکنے لگتی ہے. میں سوچتا ہوں جب اسے جو کہ بے گناہ خدا کا بیٹا تھا کس طرح ستایا گیا, گائل کیا گیا اور کچلا گیا, کیا آپ جانتے ہیں اس نے یہ کیوں برداشت کیا؟ کیونکہ میں گناہگار تھا اور وہ میری خاطر گناہگار بن گیا تاکہ اس کی قربانی کے وسیلے میں اس کی طرح خدا کا بیٹا بن جاؤں. کیسی قربانی ہے! آئے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں. قدوس خدا, میں اس چھوٹی روٹی کو آج رات تھامے ہوا ہوں. یہ روٹی ہمارے خداوند کے ٹوٹے پھوٹے, گائل, کچلے اور متاثر بدن کی مثال ہے. جیسے نبی وہاں پکار اٹھا, وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا. ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. او خداوند، ہم اسے کتنا یاد کرتے ہیں. آج رات میں اس قربانی کے ساتھ بندھا ہوا ہوں اور اس حاضرین کو قربانی کے ساتھ جوڑ رہا ہوں. کاش ہم اپنے خداوند کو اس کی موت، اس کے دکھ اٹھانے اور سب کچھ جو اس نے ہمارے لیے کیا ہے یاد رکھ سکے جب ہم اس روٹی کو اپنے منہ میں لیتے ہیں. اے خدا، ہم نامناسب لوگ ہیں، ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ایسی پاک چیز کو لیں. بس خداوند، اپنی پاکیزگی سے، اپنی حضوری سے اور اپنے لہو سے ہمارے دلوں کو پاک کر، اور اسے حاصل کرنے کے بعد ہمارے ذہنوں میں مسلسل دن اور رات بلکہ ساری زندگی خداوند کی خدمت کا ہی مقصد رہے. اب اس روٹی کو استعمال کرنے کے لیے پاک کر دے. ہم یسوع کے نام میں مانگتے ہیں، آمین. تینتیس سال جب میں نے خدمت کی ہے میرے خداوند، 30 سال سے میں اس پیالے کو اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوں اور میں اپنے آپ پر شرمسار ہوں، لیکن میں سوچتا ہوں اگر اس کے فطری لہو کے 2 قطرے آج رات میرے ہاتھوں میں ہوتے تو میں کیا کرتا، میں ان سے کیا کرتا. لیکن آپ دیکھیں، میرے ہاتھوں میں جو دیا جا چکا ہے یہ اس کی نظر میں عظیم ہے، اور یہ ہے اس کی کلیسیا جسے اس نے اپنے خون سے خریدا ہے. بس جب میں اس روٹی اور اس انگور کے شیرے کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہوں تو میں اس پر غور کرتا ہوں. اس نے کہا تھا، میں انگور کا شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا جب تک تمہارے ساتھ نیا اپنے باپ کی بادشاہی میں نہ پیوں. اس پر غور کریں، جب گناہ کی جنگ ختم ہو جائے گی تو اس طرف پہنچ کر پہلا کام یہی پاکیزہ ہوگی، یعنی خداوند کا کھانا. اور اب آئیں، اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور اس شیرے کے لیے برکت مانگتے ہیں. ہمارے آسمانی باپ، میں یہ سوچتا ہوں یہ شیرہ جو میں نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا ہے یہ یسوع کے خون کی نمائندگی ہے، اور سوچتا ہوں اس لہو کی بہتی دھارا نے میرے گناہوں کو کیسے صاف کر دیا ہے اور ان گناہوں کو بھول جانے والے سمندر میں ڈال دیا ہے اور پھر انہیں کبھی یاد نہیں کیا جاتا. ایک بچے کے روپ میں جب میں ہسپتال میں مرنے کو تھا تب اسی لہو سے تو نے مجھے بچایا تھا. اے خداوند خدا، تیرا کس طرح شکریہ ادا کروں. اور پھر تو نے مجھے خدمت سونپی کہ روح القدس کے وسیلے لوگوں کو کلوری پر لا کر گھر کی راہ دکھا سکوں. اے باپ، تیرا شکر ہو. اب اس شیرے کو خاص مقصد کے لیے پاک کر دے، اور ہونے دے کہ ہر شخص جو اس میں شریک ہو وہ روحانی اور جسمانی قوت پائے تاکہ آئندہ کا سفر کر سکے. اور یہ دعا ہم یسوع کے نام میں مانگتے ہیں، آمین. یہاں کھڑے ہو کر خاندانوں کو آتے دیکھنا، اور اسی طرح ان دنوں میں سے کسی دن ہوگا، خاندان کے بعد خاندان، وقت کے بعد وقت، گروہ کے بعد گروہ، ایک ایک کر کے آئیں گے. جب ہم اس سے ملیں گے تو یہ کیسا سما ہوگا، جبکہ سب بنی نو انسان جو زمین پر اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر بھروسہ کرتے ہیں اس دن اس سے ملیں گے، تو یہ کیسا شاندار وقت ہوگا.
We have to omit
आज रात पानी ना होने की वजह से हम पांव नहीं धो पाएंगे। अब हमारे पास सारी सहूलतें नहीं हैं, मगर हम ईमान रखते हैं ये सब कुछ बहुत जल्दी हो जाएगा। वो साथ साथ अच्छा कर रहे हैं और बड़ी तेजी से न्यू टेबरनेकल के लिए काम कर रहे हैं। किसी भी तरह मेरा ख्याल है कि ये बहुत मुनासिब है कि इस साल के पहले दिन और इस दिन के इस वक्त पाकिशा लेना। अब आप जो दूसरे इलाकों से आए हैं, कल जब आप अपने अपने घर को जाएं, तो एहतियात से गाड़ी चलाएं। खुदा आपके साथ हो, और जो यहीं करीब रहते हैं, खुदा आपके साथ हो और आपकी मदद करे। और अब खुदावंद की मर्जी से अगली इबादत के लिए मैं एरिजोना जा रहा हूँ, और अगर खुदावंद की मर्जी हुई तो 7 मोहरों पर, जिसका मैंने वादा किया है, दोबारा आकर मुनादी करूँगा। मैं वाकई ही आपकी दुआओं का तलबगार हूँ। मुझे आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए मेरे लिए दुआ जरूर करें, और काश सब कुछ आपके लिए अच्छा रहे। मैं यकीनन आपकी मौजूदगी के लिए और जिस तरह आपने मुझे सुना है अंजील की मुनादी करते हुए आपकी हौसला अफजाई करता हूँ, और मेरा ईमान है कि अब हम नए बनते जा रहे हैं, और मैं आपकी हमदर्दी का शुक्रगुजार हूँ। और आप में से बहुत सारे कई मीलों से सफर करके मुझ जैसे एक सादा शख्स को सुनने आए हैं, जो कलामे खुदा को सुनाने की कोशिश करता है। मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझसे बढ़कर किसी और को सुनने आए हैं, क्योंकि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जो मैं आपको दे सकता हूँ। मैं अनपढ़ हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। और फिर जब ये देखता हूँ कि लोग सैकड़ों मील से सफर करके आते हैं और खड़े रहकर सुबह के 2 बजे तक कलाम सुनते हैं, तो ये फिर मैं नहीं होता। मेरे पास कुछ नहीं है, ये तो मसीह है। मैं बहुत खुश हूँ कि आप उससे मोहब्बत करते हैं, मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ। हम मिलकर सब उससे प्यार करते हैं, क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं, हम कभी जुदा ना होंगे। लेकिन जब जुदाई का वक्त आता है तो थोड़ी देर के लिए बेशक हम जुदा हो सकते हैं, मगर हम फिर इकट्ठे हो जाएंगे। मेरी यही ख्वाहिश रही है कि लोगों को उस मकाम तक पहुंचाने की कोशिश करूं। और अब नए साल के आगाज में मैं आपको नया साल मुबारक नहीं कहना चाहता, बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूं, खुदा आपको बरकत दे। और अगर वो ऐसा करता है तो यही सब कुछ है जिसकी हमें इस आने वाले साल में जरूरत है, और मेरा ईमान है वो ऐसा करेगा। और मैं, बल्कि हम उसके फजल से इस नए साल में ये कोशिश करने जा रहे हैं कि वो मुझे और आपको मजीद बेहतर बनाए। मुझे उम्मीद है कि उसके फजल से इस साल में बेहतर पास्टर बनूंगा बनिस्बत गुजरे साल के। मुझे उम्मीद है कि मैं मसीह का अच्छा खादम बन जाऊंगा। मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि उसके करीब रहकर मजीद सच्चा बनूं, और जैसे पैगाम वो मुझे दे मैं दूं, और वो सब जो खुदा मुझे देगा वो मैं अपनी पूरी कुव्वत से पहुंचा सकूं और कुछ भी ना बचा रखूं। जैसे भी वो मुझे बताएगा मैं वैसे ही करूंगा। मैं जानता हूं आप भी ऐसा ही महसूस करते हैं। अगर आप भी ऐसा ही महसूस करते हैं तो चलो हम सब मिलकर काम करते हैं, क्योंकि अब वाकई शाम की रोशनी मंद पड़ रही है और सूरज डूब रहा है, जमीन सर्द होती जा रही है, और ये हम जानते हैं। रूहानी एतबार से कह रहा हूँ कि कलीसिया में बेदारी ठंडी पड़ रही है। हम नहीं जानते आगे क्या होगा, मगर जो कुछ भी हो हम खुदा पर ही भरोसा करेंगे। और जैसा कि कभी कभी मैं चाहता हूँ कि आप याद रखें कि इस टैबरनेकल में आपके साथ दुनिया के शानदार पास्टर मौजूद हैं, भाई आर्मन नेवल, जो कि एक खुदा प्रस्त इंसान और अच्छे इंसान है, और मेरी गैर मौजूदगी में भाई नेवल यहाँ के मुकम्मल इंचार्ज होंगे, वैसे ही जैसे मैं यहाँ हूँ। ट्रस्टी, डीकन और सभी अपना अपना काम जारी रखे जैसे वो करते हैं, और यही हमारा हेडक्वार्टर है, और यहीं पर हम ठीक खिदमत गुजारी का काम करते हैं। बिली पॉल मेरे साथ वहाँ नहीं रहेगा, बल्कि वो इबादत करके वापस यहाँ लौट आएगा। यहाँ का सब काम ऐसे ही चलता रहना चाहिए। मेरे यहाँ से बाहर जाने का फक्त ये मतलब नहीं कि आपको छोड़कर जा रहा हूँ। मैं फक्त इसलिए जा रहा हूँ, आपको पता है मुझे रोया दी गई है, और मैं नहीं जानता इसका क्या मतलब है। मैं भरोसा करता हूँ और ईमान रखता हूँ कि सब कुछ कलीसिया की बेहतरी के लिए है, और मैं जानता हूँ इसमें हम सबकी बेहतरी होगी अगर हम खुदा की रहनुमाई में चलते रहे। हम बस यही सब कुछ कर सकते हैं। मेरे लिए ये आसान नहीं है। मुझे याद है एक मरतबा पहले भी मुझे कलीसिया से दूर जाना पड़ा था। हम में से कुछ पुराने लोग जानते हैं मेरे लिए कितना मुश्किल होता है। मैं आपसे प्यार करता हूँ, जब मैं छोटा लड़का था तो कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता था और कोई मेरी फिक्र नहीं करता था जब मैं एक बच्चा था, और उस वक्त अगर कोई मुझसे प्यार करता था तो मैं उसके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार होता था। और देखे, अगर कोई आपसे प्यार करता है तो वो आपकी फिक्र करता है। एक मर्तबा मैं एक दरख्त पर चल रहा था और मेरी रस्सी का हुक देवदार के दरख्त से फिसल कर निकल गया, जो काफी ऊंचाई पर गिरा थी, खुल गई और मैं अपने औजार के साथ टक्कर खाते हुए 15 फीट नीचे गिर गया और मेरा बाजू जख्मी हो गया। एक खातून ये देखकर चीख उठी, उसने मुझे संभाला और थपकी दी। मैं हमेशा ऐसी खातून की कदर करता हूँ, उसने मेरी देखभाल की और ये वो थी जिसने मेरी परवाह की। और मैंने हमेशा यही सोचा है कि जो कोई मेरी फिक्र करता है मैं उससे प्यार करता हूँ। और कुछ अरसा पहले जब मैं शहर में था तो मैं उन दिनों के बारे में सोच रहा था जो हुआ करते थे, और जो कुछ खुदा ने मेरे लिए किया था मैं यकीनन उसकी तारीफ करता हूँ, और मैं आपकी मोहब्बत और रफाकत का शुक्रगुजार हूँ। मैं कभी भी आपकी रहनुमाई गलत नहीं करूँगा और ये हमेशा मेरे इल्म के मुताबिक ठीक ही होगा। और आप मेरे बयान किए हुए पैगाम को परख कर देख लें कि मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा बल्कि वही बताया जो यीशु मसीह के कलाम में है। समझे मैंने फक्त यही कोशिश की है कि उसके कलाम को तरतीब से थामे रहूं और जितना मैं जानता हूं उसके साथ खड़े हुए आपकी रहनुमाई करूं और आपको उस मकाम तक लेकर जाऊं। और अब मैं आपको भाई नेवल के हवाले करता हूं, पहले खुदा के हाथों में और फिर भाई नेवल के हाथों में सौंपता हूं, ताकि पास्टर इस कलीसिया की और इस मेराज की देखभाल करे जब तक मैं यहाँ आकर ये इबादत दोबारा नहीं लेता। और मुझे भरोसा है तब तक मैं खुदा से एक अजीम मुकाशवा हासिल कर लूंगा जो कि हर दिल में जोश भर देगा और खुदा की कलीसिया को जलाल मिलेगा। हम अक्सर पाकिशा लेते हैं। इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि आपको पता है इसके बाद मुझे कैसा महसूस होता है। और मेरा ख्याल है अब हमें ये गीत गाना चाहिए, मेरा ईमान तुझ पर है, तू कलवरी का बर्रा है। और जब हम खड़े होकर ये गाते हैं तो एक दूसरे से हाथ मिलाएं और कहें खुदा आपको बरकत दे। मेरा ईमान तुझे देखना है, मेरे भाई खुदा आपको बरकत दे, मेरी बहन खुदा आपको बरकत दे, बहन खुदा आपको बरकत दे, नजा खुदा आपको बरकत दे, मेरे भाई शीरा अब शीरा पूरे तौर से तेरी। अब आए अपने हाथ उसके लिए उठाएं। मेरा ईमान तुझे देखना है, तू कलवरी का बर्रा है, अब्दी निजात देने वाला है, अब मेरी सुन जबकि मैं दुआ गो हूं, मेरे सारे गुनाह दूर कर दे और आज ही मुझे होने दे पूरे तौर से जब तक हम दोबारा मिलते हैं। आए जब तक हम दोबारा मिलते को गाते हैं। अब आए सब मिलकर जब तक हम मिलते हैं, जब तक हम मिलते हैं, जब कि हम यीशु के कदमों में मिलते हैं, जब तक हम मिलते हैं, हमारी दोबारा मुलाकात तक वो आपके साथ हो। जब तक हम मिलते हैं, जब तक हम मिलते हैं, जब हम यीशु के कदमों में मिलते हैं, जब तक हम मिलते हैं, जब तक हम मिलते हैं, जब तक हम मिलते हैं। खुदा आपके साथ हो हमारी दोबारा मुलाकात तक। अब आए अपने सरों को झुकाते हैं। भाई नेवल, क्यों ना आप हमें दुआ के साथ रुखसत करें। खुदा आपको बरकत दे।